أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے مدد طلب کرتے رہو صبر صلات کے ساتھ یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردے نہ کہو بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے خلافت رابعہ کے شہداء کا تذکرہ ہو رہا ہے اور آج یہ اس کی دوسری قسط ہے سب سے پہلے محمود احمد صاحب اٹھوال شہید بنو عاقل سندھ تاریخ شہادت 29 جولائی 1985 مکرمہ رشیدہ بیگم صاحبہ جن کے شوہر محمود احمد اٹھوال صاحب شہید کیے گئے لکھتی ہیں کہ محمود صاحب کو شہادت کا بہت ہی شوق تھا 1974 میں احمدیوں کی مخالفت زوروں پر تھی مگر آپ نے ہر موقع پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا یہ مخالفت کم ہونے کی بجائے بڑھتی چلی گئی اور آپ کے ماموزاد بھائی مقبول احمد کو 1982 میں بنو عاقل میں شہید کر دیا گیا جب آپ اپنے بھائی کی ناش کو بحثی مقبرے میں قبر میں اتار رہے تھے تو اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہا اے مقبول یہ رتبہ کچھ نصیبوں کو نصیب ہوتا ہے پہلے مقبول شہید سے مخاطب ہوئے پھر اپنے آپ کو مخاطب کیا ہے مقبول کو دفن کرتے وقت آپ نے کہا اے مقبول یہ رتبہ شہیدوں کو نصیب ہوتا ہے پھر کہا اے محمود یعنی خود اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہا کاش تجھے بھی یہ رتبہ حاصل ہو جائے اور تو بھی یہیں پر آئے ربوہ سے واپسی پر بنو عاقل کی پولیس نے آپ سے کہا کہ آپ اپنی زمینیں فروخت کر کے کہیں اور چلے جائیں کیونکہ پہلے آپ کے رشتہ دار بھائی کو شہید کیا جا چکا ہے ہم مولویوں کی وجہ سے مجبور ہیں کچھ نہیں کر سکتے اس پر آپ نے انہوں نے جواب دیا کہ احمدیت کی مخالفت تو ہر جگہ ہے ہر جگہ دشمن ہے اگر مجھے شہادت ملنی ہے تو یہاں کیوں نہ ملے آپ کے دو بیٹے اسکول جاتے تو مولویوں کے کہنے پر کچھ لڑکے ان کو تھپڑ مارتے اور گالیاں دیتے اسکول کے اساتذہ بھی مذہبی مخالفت کی بنا پر سختی کرتے اوباشوں کے گروہ ان کے گھروں پر بھی فائرنگ کرتے رہتے دشمن رات کو چھپ کر ان کے کھیتوں کے پانی بند کر دیتے پکی ہوئی فصلوں کو آگ لگا دیتے یا کاٹ کر اجاڑتے تاکہ ان پر ذریعے معاش تنگ ہو جائے اور کسی طرح یہ احمدیت سے توبہ کر لیں آپ کی اہلیہ بیان کرتی ہیں کہ ایک رات دروازہ کھٹکا جیٹھ کا بیٹا سعید باہر گیا تو دروازے کے پاس ہی دو آدمی کھڑے تھے انہوں نے سعید پر حملہ کر دیا ایک نے اس کے منہ اور ناک کو ہاتھوں اور کپڑے سے باندھ دیا اور دوسرے نے اسے مارنا شروع کیا और घसीटते हुए दरवाजे से 15 अगस्त दूर ले गए। सईद ने बाद में बताया कि मैंने बहुत कोशिश की कि उनसे आजाद हो जाऊं लेकिन नाकाम रहा। आखिरकार जब मारने वाले ने खंजर निकाला और दूसरी तरफ सांस भर देने की बंद कर देने की वजह से मेरी हालत बिगड़ी तो मैंने अल्लाह को याद करते हुए आखिरी कोशिश की और मुंह आजाद करवाने में कामयाब हो गया। मैंने वालिद साहब को आवाजें दी, चुनाचे वो और चचा यानी महमूद अहमद साहब शहीद मौके पर पहुंच गए। एक आदमी तो भाग निकला लेकिन दूसरे को पकड़ लिया गया। मुजरिम ने पुलिस को बताया कि मैं घोटकी जिला सक्कर के एक मदरसा का तालिब इल्म हूँ। मौलवी साहिबान ने हमें भेजा था कि इस नौजवान को कत्ल कर दें लेकिन इस नौजवान की किस्मत थी ये बच गया। सईद आजकल रब्बा में रहायश पजीर हैं और दुकानदारी करते हैं। मुल्ला मुलंटे बाजार में मुसलसल लोगों को भड़काते रहे कि महमूद कादियानी को कत्ल करना वाजिब और 22 सवाल। वाकया शहादत 29 जुलाई 1985 की शाम को जब आप एक दोस्त को मिलने बाहर गए तो आपका 14 साल का बेटा भी साथ था। वापसी पर 3 आदमियों ने अचानक एक गली से निकलकर आप पर हमला कर दिया और आप वहीं शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। शहादत के वक्त अपने बेटे से कहा कि बेटे अहमदियत न छोड़ना, हाँ तुम्हें भी जान देनी पड़े। पसमानगान में बेवा मुकरमा रशीदा बेगम साहबा के अलावा 6 बेटियां और 4 बेटे छोड़े, जिनमें से 5 बेटियों की बफ़ज़्ल खुदा कामयाब शादी हो चुकी है। बाकी बच्चे गैर शादीशुदा हैं। बच्चों के अस्मा ये हैं: बेटी अदरा परवीन फारूखाबाद जिला शेखपुरा में ब्याही हुई हैं, खालदा परवीन अहमदाबाद सांगला नज़दीक रब्बा में ब्याही हुई हैं, फारूक अहमद अमरीका में हैं और गैर शादीशुदा हैं, साजिदा परवीन जर्मनी में हैं और शादीशुदा हैं, राशिदा परवीन अहमदाबाद सांगरा निज रब्बा ब्याही हुई हैं, बेटी रूबीना परवीन साहिबा ऑस्ट्रेलिया में हैं और शादीशुदा हैं, बेटी ताहिरा परवीन वालदा के साथ रहमान कॉलोनी रब्बा में रह रही हैं और गैर शादीशुदा हैं। 2 बेटों ताहिर अहमद और उस्मान अहमद ने मैट्रिक का इम्तहान दिया है और 1 बेटे लुकमान अहमद 7वीं जमात में पढ़ते हैं और ये सब वालदा के साथ रह रहे हैं। बस अल्लाह ताला के फजल से आपकी सारी औलाद दीनों दुनिया में तरक्की पजीर है। अल्लाह ताला इनकी हमेशा दीनी और दुनियावी लिहाज से हिफाजत फरमाए। मिर्ज़ा मुनव्वर बेग साहिब शहीद चुंगी अमर सिद्धू तारीख शहादत 18 अप्रैल 1986। मुकर्रम मिर्ज़ा मुनव्वर बेग साहिब शहीद तखना चुंगी अमर सिद्धू लाहौर को एक मुआनिद अहमदियत अब्दुलशकूर मनशाह ने 17 अप्रैल 1986 को फायर करके जख्मी कर दिया और आप अस्पताल में अगले रोज 18 अप्रैल 1986 को वफात पा गए। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। शहीद के बेटे मिर्ज़ा अक़दस बेग साहब लिखते हैं कि मेरे वालिद मिर्ज़ा मुनव्वर बेग साहब की किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी, लेकिन चूंकि तबलीग का शौक था इसलिए एक मौलवी अमीन और उसके चेले इस बात को पसंद नहीं करते थे। शहादत से 15 रोज कबल आपका एक गैर अहमदी दोस्त जो मौलवी अमीन के पैरोकार था आपके पास आया और पूछा कि क्या कोई असलह वगैरह घर पर है। वालिद साहब ने जवाब दिया, मेरी किसी से क्या दुश्मनी है। उसने कहा, सारा इलाका तुम्हारा दुश्मन है इसलिए असलह बनाओ। वालिद साहब ने जवाब दिया, अच्छा बना लेंगे। गालबन वो भी टो लेने के लिए आया होगा कि घर पर इनके असलह है कि नहीं। एक दिन उनके घर बाहर शोर हुआ तो घर वाले देखने बाहर निकले तो पता चला कि मौलवी अमीन के एक चहेते शागिर्द मनशाह ने उन्हें गोली मार दी है। शहीद उस वक्त खून में लथपथ सड़क पर पड़े थे। फौरन अस्पताल ले जाया गया जहां अगले रोज आपने अपनी जाना अपनी किस्मत कर दी। आपके पसमानगान में अहलिया मोहतरमा मजीदा बेगम साहिबा के अलावा 4 बेटे और 4 बेटियां हैं। 4ों बेटे मिर्ज़ा अक़दस बेग, मिर्ज़ा मुज़फ़्फ़र बेग, मिर्ज़ा वसीम बेग और मिर्ज़ा ताहिर बेग अपनी वालदा के साथ लाहौर में रहते हैं। मिर्ज़ा अक़दस बेग शादीशुदा हैं और बाकी 3ों गैर शादीशुदा हैं, जबकि बेटियों में से नुसरत मुबारक साहबा, अहलिया मुबारक अहमद खान साहब जर्मनी में मुकीम हैं, बुशरा जहांगीर साहबा अहलिया मिर्ज़ा जहांगीर बेग साहब फैसलाबाद में हैं, रुखसाना नसीम साहबा एहलिया में नसीम बेग साहब राहुलपिंडी में रहती हैं। चौथी बेटी नसीम मिर्ज़ा एहलिया मिर्ज़ा महमूद अहमद साहब मिर्ज़ा महमूद अहमद साहब इनकी मियाँ जिम्मेदारा करते हैं और ये सारे अल्लाह तआला के फ़ज़्ल से खैर आफियत से हैं। शहादत सैयद कमरुल हक साहिब शहीद तखर और राव खालिद सलमान साहिब शहीद कराची, ये कराची वाले दोस्त भी सैयद कमरुल हक साहिब की हिफाजत की गरज से भेजे गए थे और उसी दौरान वहीं शहीद हो गए थे। खुद अहमदी हुए थे, इनके वालिद गैर अहमदी थे जो आखिर तक गैर अहमदी ही रहे। आप मुकर्रम सैयद अब्दुल हादी साहिब मुंगेरी के बेटे थे, यानी सैयद कमरुल हक साहिब शहीद। आप चंदूर जिला मुंगेर में पैदा हुए, 9 या 10 साल की उम्र में कादियान आए और मिडिल तक वहीं तालीम हासिल की। तकसीम मुल्क के बाद मुल्तान से मैट्रिक किया, जिसके बाद 6 साल तक मरकज़ सिलसिला रब्बा में दफ्तर प्राइवेट सेक्रेटरी, दफ्तर वसीयत और दफ्तर खजाना में खिदमात सर अंजाम दिए। 1956 में सखर चले गए और वहीं प्राइवेट तौर पर एमए और फिर बीटी करके गवर्नमेंट कामरान हाई स्कूल में इंग्लिश टीचर लग गए और बवक्त शहादत इसी इदारे में मुलाजमत कर रहे थे। आप सैयद शमशुल हक साहेब मरहूम कारकुन दारुल इफ्ता और मुकर्रम नजमुल हक साहेब मरहूम अमीर ज़िला के भाई थे। असाफ हमीदा, नौउम्री ही में आप निज़ाम वसीयत से मुंसलिक हो गए थे। नमाज रोज़ा की बड़े खुलूस से पाबंदी करते थे, बहुत कम गो और संजीदा मिजाज थे। सखर में कायम मुकाम अमीर और ज़ईम अंसारुल्ला के तौर पर सिलसिला की खिदमत की तौफीक पाई। वाक़ शहादत, यकम रमज़ानुल मुबारक मुताबिक 11 मई 1986 की सुबह 7 बजे आप अपने घर से स्कूल जाने के लिए पैदल रवाना हुए। कराची के एक नौमुबाए खादिम मुकर्रम राव खालिद सुलेमान साहब भी हमराह थे। रस्ता में मनारा रोड के चौक के करीब 5 नामालूम अफराद ने अचानक आप पर खंजरों और कुल्हाड़ियों से हमला कर दिया। मुकर्रम खालिद सुलेमान साहब कुछ देर तक इन हमला आवरों के खिलाफ दिफा करते रहे, मगर हमला आवरों ने पिस्तौल से गोलियां चलाकर और खंजरों और कुल्हाड़ियों से पैदल पहवार करके दोनों को शहीद कर दिया। बवक्त शहादत आपकी उम्र 53 साल थी। पुलिस में इस वाक़े की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, लेकिन कोई कातिल गिरफ्तार नहीं किया गया। 12 मई 1986 की शाम दोनों शहदा के जनाजे रब्बा लाए गए, जहां नमाज जनाजा की अदायगी के बाद शहदा के कब्रिस्तान में तकसीम हुई। पसमानदान में आपने बेवा के अलावा एक बेटा और 3 बेटियां यादगार छोड़ी हैं। बेटा अनवारुल हक मुनीब गैर शादीशुदा हैं और ऑस्ट्रेलिया में मुकीम हैं। 3 बेटियों में से बड़ी सैयदा आतिया सुल्ताना साहिबा मुकर्रम मसरूर मुस्तफ़ा साहिब की अहलियाँ हैं और लाहौर में रहती हैं। दूसरी बेटी तनवीर कमर मुकर्रम मुदस्सर अहमद साहिब मलिक की अहलियाँ हैं और कैलगरी में आबाद हैं। तीसरी बेटी समरीन कमर अभी गैर शादीशुदा हैं और वालदा के साथ कराची में रहती हैं। मुकर्रम राव खालिद सुलेमान साहिब गोजरा जिला टेवा सिख टोबा टेक सिंह के रहने वाले थे। खानदान में अकेले अहमदी थे। शहादत से 2-3 साल पहले बैत की, लेकिन अपने अखलास से अज साबिकून अव्वलून में शुमार होने लगे। कराची में मुलाजिम थे और सखर में हालात की पेश नज़र मुकामी जमात की इमदाद के लिए रज़ाकाराना तौर पर आए हुए थे। आप गैर शादीशुदा थे और कोई औलाद पीछे नहीं छोड़ी। शहादत रुखसाना तारिक साहिबा शहीदा मर्दान। रुखसाना तारिक साहिबा 9 जून 1986 को ईद के दिन शहीद की गईं। उनके वालिद का बयान है कि एक अजीब बात है जो मैंने रुखसाना में देखी। वो शादी के चंद दिन बाद ही अपना जहेज बांटने से ताल्लुक़ रखती है, मुझसे इजाज़त लेकर सारा सामान गरीब लड़कियों में तकसीम कर दिया। पूछने पर कहने लगी कि मैंने उम्मीद जान से कहा था मुझे सिर्फ एक चरपाई दे दें, जिंदगी फानी है, इसका क्या भरोसा है। कितनी भी गरीबों की खिदमत कर लूं, मुझे राहत होती है। उनके मियां तारिक साहब बताते हैं कि गरीबों की खिदमत करके उनके चेहरे पर इतनी खुशी चमकती थी जैसे सूरज निकल आया हो। ईद के दिन रुखसाना ने ईद पर जाने का इरादा जाहिर किया, मगर तारिक के बड़े भाई ने मुखालफत की और डांट कर मना कर दिया, मगर ये न रुकी और पुराने कपड़ों में ही ईद की नमाज के लिए चली गई। हालांकि शादी के बाद ये उनकी पहली ईद थी। ईद की नमाज में वो बहुत रोईं, मगर घर वापस आते हुए बहुत खुश थी। सबके लिए नाश्ता तैयार किया। उनके खावन बताते हैं कि मैं हैरान था आज इतनी खुश क्यों हैं। घर में सब खुशी से मिले, हमें क्या मालूम था कि ये उनके आखिरी लम्हात हैं। मालूम होता है इनको शहादत की इत्तला मिल चुकी थी, इनके आखिरी लम्हात हैं। इतने में तारिक का बड़ा भाई आया और आते ही उसने खाने पर गोलियों की बारिश बरसा दी। तारिक का बयान है कि मुझे अक्सर कहा करती थी कि जब मैं अल्लाह को प्यारी हो जाऊं तो मुझे पहाड़ों के दामन में दफन करना। वो रब्बा ही के पहाड़ थे जहां पर वो बिलाख दफन की गई। शहीदा का ताल्लुक सरगोधा से था। आप मुकर्रम मिर्जा खान मोहम्मद साहब की बेटी थीं। आपके शौहर अपने खुसैर मिर्जा खान मोहम्मद साहब के पास सरगोधा ही में मुकीम हैं। शहादत बाबू मोहम्मद अब्दुल गफ्फार साहेब शहीद हैदराबाद, यौम शहादत 9 जुलाई 1986। आप मास्टर खुदाबख्श साहेब के यहाँ कानपुर इंडिया में 1906 में पैदा हुए। 1916 में उनके वालिद साहब ने तमाम अफराज खाना समेत हजरत खलीफुल मसीह सानी के हाथ पर शर्फ बैत हासिल किया। तकसीम मुल्क के वक्त आप हिजरत करके हैदराबाद सिंध में आकर आबाद हो गए। पेशा के एतबार से आप फोटोग्राफर थे, कुरान करीम से बहुत मोहब्बत रखते थे, बहुत मिलनसार, हमेशा जमात की खिदमत में कमर बस्ता। एक लंबे अरसे तक जमात की इमारत आपके सपूर्द रही। हैदराबाद में आप जमात की रूह रवां थे, एक निडर दाई अल्लाह थे और अल्लाह ताला के फजल से मूसी भी थे। वाकई शहादत 9 जुलाई 1986 बरोज बुध 1 बजे दोपहर एक अपने शोरूम में कुर्सी पर बैठे थे कि एक दरिंदा सिफत मुल्ला आपकी दुकान में दाखिल हुआ और उसने आप पर छुरी से पैदल पै वार करके आपको शहीद कर दिया। आपके हाथों के निशानात से जाहिर होता था कि आपने आखिरी वक्त तक हमलावर का मुकाबला किया। उस वक्त आपका सिर्फ एक मुलाजिम दुकान पर मौजूद था, मगर डार्क रूम में तस्वीरें बना रहा था। वो जब काम से फारिग होकर बाहर निकला तो उसने शोर मचाया, लोग जमा हो गए, फ़ोन किए गए और आपको उसी वक्त अस्पताल ले जाया गया। लेकिन रास्ते ही में आप अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह को प्यारे से पहले ही थे, यानी रास्ते ही में वफात पा गए। इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन आपकी तस्वीर रब्बा में अमल में आई। उस्मान ग्रान मुकर्रम ज़ुल्फ़िकार अहमद साहिब कुरैशी गुज़श्ता 40 साल से यहाँ लंदन में मुकीम हैं। आगे उनके बच्चों की भी शादियां हो चुकी हैं। मुकर्रमा मुबारका बेगम साहिबा अहलिया कुरैशी मोहम्मद अक्सम साहब कराची में हैं। मुकर्रमा सदीक़ा बेगम साहिबा अहलिया हकीम अब्दुल बासित सदीक़ी साहब हैदराबाद में हैं। मुकर्रमा सादिका बेगम साहिबा अहलिया मिर्ज़ा अल्ताफ़ अहमद साहब वाकेंट में हैं। मुकर्रमा बुशरा अहमद साहिबा अहलिया मुकर्रम वहीद अहमद साहब भी शादीशुदा हैं और जर्मनी में हैं और अपने हल्का की रजना की सदर हैं। मुकर्रमा साबरा बेगम साहिबा अहलिया ज़हूरुल हसन साहब मरहूम भी अपने बच्चों के साथ जर्मनी में आबाद हैं। बाबू साहब के सब बच्चे खुदा के फज़ल से दीनी और दुनियावी नेमतों से मुतमत्ते हैं। ग़ुलाम ज़हीर अहमद साहिब शहीद सुहावा ज़िला जेहलम। आप सुहावा ज़िला जेहलम के रहने वाले थे और मुकर्रम शेख बशीर अहमद साहब के साहबजादे थे। वाक़िया शहादत 25 फरवरी 1987 की रात को आप बिजली दुरुस्त करवाने जा रहे थे कि अहमदियत की मुखालफत के बायस बाद मालूम अफराद ने फायर करके शहीद कर दिया। वरसा शहीद मरहूम ने बेवा के अलावा 3 बेटियां और 1 बेटा पसमानगान में छोड़े, बेटा मरहूम की शहादत से 6 माह बाद पैदा हुआ, सब बच्चे अभी जेर तालीम हैं। नाजिया जहीर, राशिदा जहीर, बुशरा जहीर, आसन जहीर अपनी वालदा के साथ रहते हैं। शहीद मरहूम की विधवा ने उनके बड़े भाई से बाद में शादी कर ली थी। डॉक्टर मुनव्वर अहमद साहब शहीद चक्रण, तारीख शहादत 14 मई 1989। मैंने कहा था उर्दू में नवास लिख दिया करें, पहले भी एक दफा थोड़ी सी गुमगू की हालत थी, मैंने दोनों बातों को जिक्र कर दिया था, मगर तसी करने वालों ने फिर भी तसी कर ही दी। इसलिए तारीख शहादत 1989। डॉक्टर मुनव्वर अहमद साहब के वाले चौधरी बशीर अहमद साहब अठवाल तहसील जिला गुरदासपुर के रहने वाले थे। डॉक्टर साहब की पैदाइश 1957 में चक नंबर 318 तहसील टोबरटेक सिंह हुई। आपके खानदान में अहमदियत का आगाज डॉक्टर साहब के परदादा नवाब वल जमींदार के जरिए हुआ। डॉक्टर साहब ने इब्तदाई तालीम सकरण जिला नवाबशाह में हासिल की, जहां आपके वालिद बसिलसिला रोजगार मुकीम थे। मैट्रिक के बाद आपने सिदिया कॉलेज रबा में दाखिला लिया, जहां से फाजिल अत्तिब व जराह का इम्तिहान पास करने के बाद सकरण में प्रैक्टिस शुरू कर दी। 84 में आपकी शादी सकरण के मौजूदा सदर जमात चौधरी फजंदली साहब की सरदारी से हुई। डॉक्टर साहब की शहादत से कबल आपकी अहलिया ने ख्वाब में देखा कि मेरी सोने की चूड़ियों में से एक चूड़ी टूट कर गिर गई है और साथ ही बहुत हजूम है और औरतें बारी बारी मेरे गले लग कर रो रही हैं, लेकिन मैं समझ न सकी कि वो क्यों रो रही हैं। सुबह उठकर परेशान रही, सदका भी दिया, मगर महसूस होता था जैसे जिस्म से जान निकल गई है। डॉक्टर साहब शहीद को जब ख्वाब सुनाई तो कहने लगे, अल्लाह पर भरोसा रखो, जो रात कब्र में आनी है वो बाहर नहीं आएगी। मालूम होता है वो इस ख्वाब की तबीर सही समझ चुके थे। बहुत बहादुर इंसान थे, कहा करते थे कि शहादत किसी किसी को नसीब हुआ करती है, ये नसीबों वालों का हिस्सा है, काश ये रुतबा मुझे नसीब हो। सकरण के हालात ज़्यादा ख़राब हुए तो बीवी से कहने लगे कि रबा चली जाओ, मैं वो ना मांगी, और कहा कि आपको छोड़ कर नहीं जाऊंगी। शहादत के दिन क्लिनिक में दो आदमी आए और गोलियां बरसाकर आपको वही शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। कंपाउंडर घर रोता हुआ आया और बताया कि डॉक्टर साहब को किसी ने गोली मार दी है। बहुत अजूम इकट्ठा हो गया, एक गम का पहाड़ था जो अली खान पर टूट पड़ा। बच्चे कहते थे कि अबू को किसने मारा है, क्यों मारा। एक बच्चा कहता मैं उनको गोली मार दूंगा, दूसरा कहता वहां और लोग भी थे, उन्होंने हमारे अब्बा ही को क्यों मारा। छोटे बच्चे थे, इतने छोटे थे कि इन बातों को समझ नहीं सकते थे। आपकी बेवा मुकर्रमा तनवीर कौशल साहिबा चारों बच्चों के साथ इस वक्त बियतुल हम रब्बा में रहाइश पजीर हैं। सब बच्चे जेर तालीम हैं और उनके नाम ये हैं, मंसूरा फरहत उम्र 15 साल मैट्रिक में जेर तालीम है, अदील मुनव्वर की उम्र 13 साल है 8वीं में जेर तालीम है, बेटे वकास अहमद मुनव्वर की उम्र 12 साल है वो 7वीं में जेर तालीम है, बेटा तौसीफ अहमद मुनव्वर जो डॉक्टर साहब की हालत के बाद पैदा हुआ था उसकी उम्र करीबन 11 साल है और वो 4वीं जमात में पढ़ता है। अल्लाह इन सबको दीन दुनिया की नेमतों से नवाजे। नज़ीर अहमद साहब शाख़ी शहीद चक सिकंदर जिला गुजरांवाला जिला गुजरात, और रफीक अहमद साहब साकिब शहीद चक सिकंदर जिला गुजरात, और अजीज़ा नबीला बिन मुकर्रम मुश्ताक अहमद साहब चक सिकंदर जिला गुजरात। इन तीनों की शहादत का वाक़िया ये है कि मुकर्रम नज़ीर अहमद साहब साकी 1953 में मुकर्रम महमूद अहमद खान साहब के यहाँ चक सिकंदर जिला गुजरात में पैदा हुए, पैदाइशी अहमदी थे। आपके परदादा मुकर्रम दुल्ला खान साहब और दादा मुकर्रम काले खान साहब हज़रत वसीम अलैहिस्सलाम के हाथ पर उस वक्त बैठ करके सिलसिले में दाखिल हुए, جب آپ مقدمہ کے سلسلے میں جہلم تشریف لائے ہوئے تھے رضوان اللہ علیہ، آپ فوج میں ملازم تھے اور اچھے کھلاڑی اور باکسر تھے، فوج سے آپ کی ریٹائرمنٹ اس وجہ سے ہوئی کہ ایک موقع پر حضرت نسیم عوض علیہ السلام اور احمدیت کے خلاف کسی کو باتیں کرتے ہوئے سن کر آپ برداشت نہ کر سکے اور اسے مکہ مارا، جس سے وہ وہیں مر گیا. یہ جو واقعہ ہے حضرت موسیٰ کے مکہ مارنے والے واقعہ کی یاد دلاتا ہے. ان کو گرفتار کر لیا گیا اور کورٹ مارشل بھی ہوا، لیکن پھر موجزانہ طور پر آپ کو بے قصور قرار دے کر بما مراد پینشن وغیرہ دے کر ریٹائر کر دیا گیا. اصل میں شہادت ان کے مقدر میں تھی، اس لیے سارا سلوک ان سے کیا گیا. دوسرے شہید مکرم رفیق احمد صاحب ثاقب 1952 میں چک سکندر ضلع گجرات میں پیدا ہوئے. آپ کے والد کا نام خان محمد صاحب اور والدہ کا نام فتح بیگم صاحبہ تھا. شہید مرحوم پیدائشی احمدی تھے. آپ کے پردادا مکرم محمد بھوٹا صاحب اور دادا مکرم محمد بخش صاحب کو بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے دست مبارک پر حضور کے سفر جہلم کے دوران بیعت کی سعادت نصیب ہوئی تھی. آپ فوج میں ملازم تھے اور شہادت کے وقت رخصت پر گواہ ہوئے تھے. نبیلہ شہید مکرم مشتاق احمد صاحب کے ہاں چک سکندر ضلع گجرات میں پیدا ہوئیں اور 10 سال کی عمر میں جامع شہادت نوش کر کے اپنے مولا کے حضور حاضر ہو گئے. ان سب کی شہادت 16 جولائی 1999 کو ہوئی، جب مخالفین 89 مرادیں ملی، جب مخالفین احمدیت نے چک سکندر پر چاروں طرف سے حملہ کر دیا. اس حملہ کے دوران احمدیوں کے قریباً 64 مکانات جلائے گئے اور کھلے بندوں لوٹ مار کی گئی. مکرم نذیر احمد صاحب ساقی شہید نے پسماندگان میں 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے چھوڑے. 2 بیٹیوں کی شادی ہو چکی ہے اور باقی بچے آپ کی اپنی والدہ محترمہ کے زیر کفالت ہے. باقی بچے نذیر شہید کی والدہ محترمہ کے زیر کفالت ہے. دوسرے شہید مکرم رفیق احمد صاحب ثاقب شہید نے اپنے پیچھے 6 بیٹیاں 2 بیٹے اور ایک بیوہ سوگوار چھوڑے، جو اس وقت ربوہ میں مقیم ہیں. شہادت مکرم ڈاکٹر عبد القدیر ددران صاحب، تاریخ شہادت 2 اگست 1989. آپ حضرت مولوی رحیم بخش صاحب اب تلوانڈی جھنگلہ اور حضرت برکت بی بی صاحبہ کے ہاں 1924 میں پیدا ہوئے. آپ کے والد بزرگوار 313 صحابہ میں تھے. آپ نے پنجاب یونیورسٹی سے ڈاکٹری کا کورس پاس کیا اور کچھ عرصہ بطور واقف زندگی ناصر آباد اسٹیٹ کے ڈسپنسری میں خدمات بجا لاتے رہے. اس کے بعد پہلے اپنے بڑے بھائی مکرم ڈاکٹر عبد القدوس صاحب شہید کے پاس نوابشہ رہے، پھر قاضی احمد ضلع نوابشہ میں اپنا کلینک کھول لیا. بوقت شہادت قاضی احمد کی جماعت کے صدر تھے. 1984 میں جب حالات خراب ہوئے تو ان کو کئی دفعہ دھمکی آمیز خطوط آئے کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، لیکن آپ کو ان دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہ تھی، بلکہ نماز تہجد میں شہادت کی دعا مانگا کرتے تھے. ایک روز ایک شخص اپنے آپ کو مریض ظاہر کر کے دکان میں آیا اور اس نے آتے ہی کئی فائر کیے اور ڈاکٹر صاحب نے اسی وقت شہادت کا جذبہ پا لیا. آپ آب زمزم سے دھلے ہوئے 2 کفن مکے سے لائے تھے. آپ کی خواہش تھی کہ انہی میں آپ کو دفنایا جائے. اصولاً تو شہید کو کفن نہیں دیا جاتا، اپنے انہی کپڑوں میں مدفون ہوتا ہے جن میں خون میں لت پت وہ شہید ہوتا ہے، لیکن ان کی خواہش تھی کہ ان کو مکے والا کفن دیا جائے. اس کا سبب اللہ نے یہ بنا دیا کہ پولیس نے وہ کپڑے اپنے قبضے میں لے لیے جن کپڑوں میں شہید ہوئے تھے، اور باوجود اصرار کے ان کو واپس نہ کیا. نفیتاً ان کو اسی مکے والے کفن میں جو اپنے ساتھ لے کر آئے تھے آب زمزم میں دھلا کر اسی میں دفن کیا گیا. شہید مرحوم نے اپنی بیوہ غلام فاطمہ بی بی صاحبہ کے علاوہ 4 بیٹے اور 1 بیٹی پسماندگان میں چھوڑے. محمد عبدالسمیع ددران صاحب شادی شدہ ہیں اور امریکہ میں ملازمت کرتے ہیں. अब्दुल हलीम जदरान साहिब इस्लामाबाद पाकिस्तान में असिस्टेंट चीफ मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस में काम करते हैं और शादीशुदा हैं। अब्दुल रफीक जदरान एमएससी दूसरे जहां स्कीम के तहत 13 साल बतौर वक्फ मगरबी अफ्रीका में काम करते रहे, आजकल कनाडा में मुकीम हैं। अमतुल्ला खानम साहिबा शादीशुदा हैं और नवाबशाह में रह रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल मोमिन जदरान साहिब शादीशुदा हैं, नुसरत जहां स्कीम के तहत 1993 से 1996 तक वक्फ किया और अब बसिलसिला तालीम खुद तो आयरलैंड में हैं और उनकी बेगम ताहिरा मोमिन और बच्चे यहां लंदन में मुकीम हैं। जिला नवाबशाह का वो बासर जिम्मेदार जो कि पीर बेर वाले का मुरीद था और जिसके इमाम पर ही इस इलाके के अक्सर अहमदी डॉक्टरों की शहादतें हुई, उसकी मौत अपने अंदर एक इबरत का निशान रखती है। उसके जवान बेटे ने घर वालों से बाहमी मशवरा करके अपने बाप को रात सोते में गोली मारी। गोली लगने के बाद वो जरा सा उठा तो उसकी बीवी और बच्चों ने समझा कि उसको गोली नहीं लगी और अगर ये बच गया तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। चनाचे उसकी बीवी और बेटियों ने और बेटे ने मिलकर उसका गला दबाना शुरू किया और उस वक्त तक नहीं छोड़ा जब तक उसकी मौत का यकीन नहीं हो गया। डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस साहेब शहीद काजी अहमद जिला नवाबशाह यौम शहादत 28 सितंबर। आप डॉक्टर अब्दुल कदीर जदरान के बड़े भाई थे, तकसीम मुल्क के बाद सिंध में आकर आबाद हुए और शहादत के वक्त काजी अहमद जिला नवाबशाह में रहायश पजीर थे। वाकया शहादत 28 सितंबर को आप हसब मामूल अपने क्लिनिक में काम कर रहे थे, एक मरीज को देखने के लिए जाना पड़ा। मरीज देखकर वापस आ रहे थे कि रास्ते में 3 अफराद में से एक ने आपकी कमर के साथ पिस्तौल रखकर फायर कर दिया, आप गिर गए। लोगों ने आपको उठाया और एडी ट्रस्ट की एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले गए लेकिन आप रास्ते ही में दम तोड़ गए। किसी दोस्त ने जो आपको पहचानता था आपके घर टेलीफोन के जरिए वाकया की इत्तला दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शहीद मरहूम ने अपने पीछे 2 बेटियां और 4 बेटे छोड़े हैं जिनकी तफसील यह है। अमतुल कुद्दूस साहिबा शादीशुदा हैं और लाहौर में रहती हैं। अब्दुल कयूम साहेब MSc शादीशुदा हैं, नवाबशाह में मुकीम हैं और मुलाजमत करते हैं। अब्दुल शकूर साहेब BSc शादीशुदा हैं, नवाबशाह में मुकीम हैं और मुलाजमत करते हैं। अब्दुल माजिद साहेब शादीशुदा हैं और कराची में मुलाजमत करते हैं। अमतुस सबूर साहिबा MA एलिया मिर्जा हफीज अहमद साहेब कारकुन तहरीकी रब्बा में रहती हैं। सब बच्चे अल्लाह के फल से दीनी और दुनियावी नेमतों से मालामाल है। शहादत मुबशर अहमद शहीद तीमापुर कर्नाटक भारत। यौम शहादत 30 जून 1990। जमात अहमदी आलमगीर ने जब 7 साला जश्न की तकरीबात मनाई तो तीमापुर की जमात ने भी शायान शान प्रोग्राम बनाया। उससे वहां के शरपसंद गैर अहमदियों में हसद की आग भड़क उठी और शरारतें करने लगे। 29 जून 1990 को एक अहमदी खातून की वफात पर जनाजा को उठाने के लिए मुकामी मस्जिद की इंतजामिया से डोला मांगा गया तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। वहाँ रिवाज यह है कि वफात शुदगान को डोले में डालकर ले जाया जाता है। हर मुल्क के अपने अपने रिवाज होते हैं, वहाँ का यही रिवाज है जिस पर सब MD गैर MD बराबर अमल करते हैं। वहाँ के मुकामी रिवाज के मुताबिक वही जिक्र है, जनाजा को घर से कब्रिस्तान पहुंचाने के लिए चरपाई की जगह डोला इस्तेमाल किया जाता है। अगले दिन 30 जून को पुलिस इंस्पेक्टर की मौजूदगी में 2 बारा मुतालबा किया गया तो ना सिर्फ ये कि इनकार कर दिया गया बल्कि पहले से तैयार शुदा मनसूबा के मुताबिक उन चंद अहमदियों पर जो डोला हासिल करने के लिए गए थे एक जमे गफीर ने लाठियों और पत्थरों से हमला कर दिया। इस हमले में चंद अहमदी सख्त जख्मी हो गए जिनमें से मुकर्रम मुबशर अहमद साहब नागुन मौके पर ही शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ان کے پسماندگان وغیرہ کے متعلق کوئی دوسری خبر نہیں ملی. اب اس خطبہ کو سننے کے بعد شاید اطلاع آ جائے. اگر ان کا اب دوبارہ کسی خطبہ میں ذکر نہیں ہو سکتا, یہ ریکارڈ میں چلی جائیں گے. نصیر احمد علوی صاحب شہید, دور ضلع نوابشاہ, تاریخ شہادت 17 نومبر 1990. نصیر احمد علوی شہید کے والد صاحب, جو دور ضلع نوابشاہ کے رہنے والے تھے, خود احمدی ہوئے تھے, نہایت مخلص اور فدائی تھے. یہ آپ ہی کی نیک تربیت کا نتیجہ تھا کہ نصیر احمد علوی دوسروں تک احمدیت کا پیغام پہنچانے میں سرگردان رہتے تھے. کہا کرتے تھے کہ اگر میں دن میں 2-4 آدمیوں کو تبلیغ نہ کروں تو میرا کھانا ہضم نہیں ہوتا. اس وجہ سے دن بدن متعصب لوگ آپ کی مخالفت میں بڑھتے رہے. ایک دو دفعہ دھمکی بھی ملی کہ اگر تبلیغ سے باز نہ آئے تو آپ کو مار دیا جائے گا, لیکن آپ نے اس دھمکی کی کوئی پرواہ نہ کی اور دعوت اللہ میں مصروف رہے. 17 نومبر 1990 کو جمعہ اور ہفتے کی درمیانی رات 2 بجے 3 آدمی آپ کے گھر پر آئے. ان میں سے 2 تو دیوار پھلانگ کر اندر آ گیا اور 1 دیوار پر کھڑا رہا. گھر کے اندر داخل ہونے والے دو افراد میں سے ایک نے آپ کے منہ پر تکیہ رکھا اور دوسرے نے آپ کے دل کے قریب فائر کیا. آپ کی اہلیہ فائر کی آواز سن کر جاگ اٹھی تو کیا دیکھتی ہیں کہ ایک آدمی آپ پر جھکا ہوا ہے. اہلیہ نے اس کو پیچھے سے پکڑنا چاہا, اس نے کوہنی مار کر انہیں نیچے گرا دیا اور دیوار پھلانگ کر بھاگ گیا. اہلیہ نے جب آپ کے اوپر سے کپڑا ہٹایا تو زندگی کی رمق ابھی باقی تھی. فوراً ہسپتال پہنچایا گیا, لیکن رستے ہی میں آپ شہید ہو گئے. انہ اللہ بن اللہ راجیوں. آپ نے پسماندگان میں بیوہ مکرمہ فہمیدہ بیگم صاحبہ کے علاوہ 2 بیٹیاں اور 3 بیٹے چھوڑے ہیں. بڑی بیٹی فرحت نصیر صاحبہ سمبڑیال میں بھی آئی ہوئی ہیں. دوسری بیٹی انیخہ چودھری صاحبہ ہومیوپیتھی کے کورس میں ملک میں اول رہیں. ان کا نکاح ٹورانٹو کے صفدر حسین واجد صاحب سے ہو چکا ہے, لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی. 3 بیٹے احسان الحق علوی, انعام الحق علوی اور انوار الحق علوی ابھی زیر تعلیم ہیں. شہادت محمد اشرف صاحب شہید, چلہن, ضلع گوجرانوالا, یوم شہادت 16 دسمبر 1992 عیسوی. محمد اشرف صاحب جلدن, ضلع گوجرانوالا, 1984 میں خود احمدی ہوئے تھے اور بہت جلد جلد ترقی کی. مجھے لکھا کرتے تھے کہ میں تو ہر وقت جان ہتھیلی پر لیے پھرتا ہوں, سوائے بھی بچوں کے کوئی میرا نہیں رہا. ان پر 16 دسمبر 1992 کی رات کو حملہ کیا گیا. حملہ آوروں نے دھوکے سے ان کا اعتماد حاصل کیا. رات ان کے پاس ٹھہرے, کھانا کھایا, پھر سوتے میں ان کے سر اور چہرے پر پستول سے وائر کر کے شہید کر دیا. انا للہ انا الیہ راجعون. ان کی اہلیہ نے اپنے بیٹے کو ساتھ کے گاؤں اطلاع دینے کے لیے بھجوایا تھا. سب خبر سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. ان کی اہلیہ نے اپنے بیٹے کو ساتھ کے گاؤں اطلاع دینے کے لیے بھجوایا تو سب خبر سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے, مگر خدا کی راہ میں جان دینے والے اس دوست کے بیٹے نے ان کو تسلیاں دیں کہ میرا باپ نیک انجام کو پہنچا ہے, میری والدہ بھی خوش ہیں اور راضی ہیں. شہید مرحوم نے پسماندگان میں بیوہ کے علاوہ 2 بیٹیاں اور 6 بیٹے چھوڑے, جو سب ابھی زیر تعلیم ہیں, بچوں کے سمائے ہیں. اشتیاق احمد صاحب, اعجاز احمد صاحب, افتخار احمد صاحب, شہزاد احمد صاحب, طاہر احمد صاحب, خرم شہزاد صاحب, سالیہ اشرف صاحبہ اور سعیدہ اشرف صاحبہ. رانا ریاض احمد صاحب شہید, لاہور, تاریخ شہادت 5 فروری 1994. آپ 15 مارچ 1954 کو مکرم رانا عبدالستار صاحب کے ہاں ضلع بہاڑی کے گاؤں 295 ایوی میں پیدا ہوئے. میٹرک کرنے کے بعد بلڈنگ میٹیریل کا کاروبار شروع کیا. آپ کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت چوہدری غلام قادر صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب لنگری ضلع جلندھر کا داماد بننے کا شرف نصیب ہوا. واقعہ شہادت, 2 फरवरी 1994 की सेपहर 3 बजे 10 मुआनदीन अहमदियत ने शहीद मरहूम के वालिद मुकर्रम राना अब्दुल सितार साहब को, जो एक पुरजोश दाई लल्ला थे, शहीद मरहूम के वालिद मुकर्रम राना अब्दुल सितार साहब जो एक पुरजोश दाई लल्ला थे पर हमला किया और जदोकूप करने के बाद उन्हें अगवा करने की कोशिश की। इसी स्नान में राणा रियाज अहमद साहब घर से बाहर आए और वालिद साहब को बचाने की कोशिश की तो एक बदबख्त ने बिल्कुल करीब से उन पर फायर किया जो पेशानी पर लगा और अब वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। 2 दिन जिंदगी और मौत की कश्मकश में उबतला रहने के बाद 5 फरवरी 1994 को अपने खालिक हकीकी के हजूर हाजिर हो गए और मौत पर हमेशा की जिंदगी फतेहयाब हुई। शहादत के वक्त आपकी उम्र 39 साल थी। आपकी शहादत के सिर्फ 4 माह बाद आपकी अहलिया भी वफात पा गई। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। 3 बेटे और 5 बेटियां खुदा के फजल से बकायद हयात हैं और अभी जेर तालीम हैं। 2 बेटे वक्फे नौ की तहरीक में भी शामिल हैं। शहीद मरहूम अपने भाइयों और बहनों में सबसे बड़े थे। उनके 5 भाई और 2 बहनें हैं। 1 भाई राना इरसाल अहमद साहब मुरबी सिलसिला हैं और इन दिनों जामिया में बतौर उस्ताद खिदमत की तौफीक पा रहे हैं और अल्लाह ताला के फजल से बहुत काबिल इंसान हैं। अहमद रसूलुल्लाह साहिब शहीद लाहौर। तारीख शहादत 5 फरवरी 1994। आप मुकर्रम डॉक्टर एजाज़ुल्लाह साहिब साकिन ऑस्ट्रेलिया के साहबजादे और हजरत चौधरी सर मोहम्मद जफरुल्ला खान साहब रजी अल्लाह ताला अन्हु के नवासे थे। आप अपनी वालदा मुकर्रमा अमतुल हई साहिबा अहलिया चौधरी हमीद रसूलुल्लाह साहिब अमीरुल्ला लाहौर के पास लाहौर में रहते थे। आप इंतहाई नेक नफ सादा और पुरवकार तबीयत के मालिक थे। बचपन ही से तहज्जुद गुजार थे। खुदा के फजल से मूसी भी थे और हर माली कुर्बानी में हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। 5 फरवरी 1994 को आप अपनी रहायश गाह पर आराम कर रहे थे कि नामालूम हमला आवरों ने कमरा में घुसकर आपके सर पर आहनी सरिया मार मार कर आपको शहीद कर दिया और जाती दफा दरवाज़ा को बाहर से मुकफ्फल कर गए। अगले दिन शाम के वक्त आपकी शहादत का इलम हुआ। 7 फरवरी को रब्बा में आम कब्रिस्तान में तस्फीन हुई। आप गैर शादीशुदा थे। ये समझ नहीं आई कि मूसी थे वो आम कब्रिस्तान में क्यों तदफीन हुए। ये मालूम करना चाहिए निज़ाम वसीयत से। उस वक्त तो मजबूरी हो गई पुलिस की, बाद में दोबारा निकाला जाता है नाश को देखने के लिए, मगर बाद में तो उनकी नाश उनके ताबूत को बेशी मकबरे में मुंतकिल कर देना चाहिए। वसीम अहमद भट्ट साहिब शहीद समनाबाद जिला फैसलाबाद और हफीज़ अहमद भट्ट साहिब शहीद फैसलाबाद। तारीख शहादत 30 अगस्त 1994। मुकर्रम वसीम अहमद भट्ट साहिब 1969 में मुकर्रम मोहम्मद रमज़ान भट्ट साहिब के यहाँ पैदा हुए। मिडिल तक तालीम हासिल की और फिर पावर लूम्स का काम करने लगे। जमात से बहुत लगाव रखते थे और दावत अल्लाह में खूब हिस्सा लेते थे। नमाज बाकायदगी से अदा करते और चंदा में भी बहुत बाकायदा थे। गरीब पर रखे। वाक़ शहादत 30 अगस्त 1994 को एक शख्स मुश्ताक और उसके साथी हमला आवरों ने आप पर और आपके भाइयों पर राइफलों से गोलियां बरसाईं, जिनमें से एक गोली आपके दिल पर और दूसरी बाईं टांग पर लगी और आप मौके पर ही शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। बवक्त शहादत आपकी उम्र 25 साल थी और गैर शादीशुदा थे। इस हमले में आपके बड़े भाई मोहम्मद अमीन भट्ट और 2 चचाजाद भाई हफीज़ अहमद साहेब भट्ट और अख्तर करीम साहेब भट्ट भी शदीद जख्मी हुए, जिनमें से हफीज़ भट्ट साहेब इब्ने अल्लाह रखा भट्ट साहेब ने अलाइड अस्पताल पहुँच कर दम तोड़ दिया। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोनों की तस्वीरें 31 अगस्त 1994 को अरबला के कब्रिस्तान आम में हुई। हफीज बट शहीद एक हमदर्द, मिलनसार और मुखलिस अहमदी थे और दावत अल्लाह का बहुत शौक रखते थे। नमाज जमात बाजमात के अलावा तहज्जुद भी अदा किया करते थे। चंदा जात में बहुत बाकायदा थे और वक्त शहादत उम्र 18 साल थी और गैर शादीशुदा थे। पसमानगान में आपके वालदैन, 6 भाई और 4 बहनें हैं। 4 भाइयों और 3 बहनों की शादियां हो चुकी हैं और 2 भाई अभी गैर शादीशुदा हैं। शहादत प्रोफेसर डॉक्टर नसीम बाबर साहेब, शहीद इस्लामाबाद पाकिस्तान। तारीख शहादत 10 अक्टूबर 1994। प्रोफेसर डॉक्टर नसीम बाबर शहीद 1952 में डॉक्टर सैयद मोहम्मद जी अहमदी और सैयद अहमदुल वहीद साहिबा के यहाँ पैदा हुए। आपके दादा हजरत सैयद मोहम्मद शाह साहिब रजी अल्लाह ताला अन्हो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के सहाबा में से थे। आप बचपन से ही गैर मामूली ज़हीन थे, यानी प्रोफेसर डॉक्टर नसीम साहेब, और खुदा के फजल से मिडिल से लेकर PhD तक मुसलसल तालीमी वज़ाइफ हासिल करते रहे। PhD के लिए वारसा टेक्निकल यूनिवर्सिटी पोलैंड में दाखिल हुए और डॉक्टरेट करने के बाद 1980 में वापस आए। पोलैंड में क़याम के दौरान आपने मुसलम डॉक्टर अब्दुल सलाम साहेब मरहूम के इदारे इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स से भी रब्ता रखा और उनके मुख्तसर कोर्स में दाखिला लिया। इसी दौरान स्वीडन, जर्मनी और इटली की कई और अहम यूनिवर्सिटियों से भी आपका रब्ता हो गया। चुनाचे आप तकरीबन हर साल किसी न किसी बैन अवी यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर जाते रहे। टेक्निकल यूनिवर्सिटी बर्लिन में तकरीबन 1 साल गुजारा और फिर इस यूनिवर्सिटी से अपने करीबी रवाबित की बिना पर डिफेक्ट्स इन सेमी कंडक्टर मटीरियल्स और हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिविटी के मैदान में ऐसी आला काबिल कदर रिसर्च की कि बर्लिन की टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने कायद आजम यूनिवर्सिटी के शोबा फिजिक्स में आपकी निगरानी में सेमी कंडक्टर मटीरियल्स पर मजीद तहकीक के लिए एक शोबा खोलने की मंजूरी दे दी। इस सिलसिले में तमाम इंतजाम मुकम्मल थे और जर्मनी से अहम साइंसी आलात की दरामद शुरू होने वाली थी कि आपकी शहादत हुई। आपने FSC से लेकर MSc तक का तालिब इल्मी का ज़माना रावलपिंडी में एक मुस्तैद मुतहर्रिक खादिम के तौर पर गुजारा और मुख्तलिफ शोबों के नाज़िम रहे। वाक़ शहादत 10 अक्टूबर 1994 रात 10:30 बजे आपने घंटी बजने पर अपने घर का दरवाज़ा खोला तो चेहरे पर निकाब ओढ़े हुए एक शख्स ने घर के दरवाजे के ऐन सामने आप पर क्लाशनकोफ के 2 फायर किए, एक दिल पर लगा और दूसरा गर्दन पर। दोनों गोलियां जिस्म से पार होकर पीछे दीवार पर लगीं जिनसे सख्त कंक्रीट का प्लस्तर भी उखड़ गया। कातिल फौरी तौर पर दीवार फरांग कर अकबी जंगल में फरार होने में कामयाब हो गया। इस हादसा की ऐनी शाहिद आपकी अहलिया मुकर्रमा तमकीन बाबर साहिबा के बयान के मुताबिक कातिल 6 फुट कद का एक तनुमंद शख्स था जिसने शलवार कमीज पहनी हुई थी, चेहरे पर नकाब था जिसमें सिर्फ आंखें नजर आ रही थीं। उसके पास असलहा था जो उसने दरवाजा खुलने से पहले ही आप पर तान रखा था। उसने कोई आवाज न निकाली न बात की, बस चश्मदन में फायर करके फरार हो गया। आपकी अहलिया के शोर मचाने पर एक हमसाया प्रोफेसर मिस्टर परवेज हूद भाई दौड़े आए और अपनी कार में डॉक्टर नसीम बाबर को डालकर अस्पताल की तरफ रवाना हुए, लेकिन रास्ते ही में आपकी रूह अफसरी से परवाज कर गई। पसमानगान में बेवा के अलावा एक बेटी और 2 बेटे छोड़े। तीनों बच्चे रीमा बाबर, सकरात बाबर और जबरान बाबर अभी जेर तालीम हैं और आजकल अपनी वालदा के हमरा कैनेडा में मुखीम हैं। आपकी एक बहन मुकर्रमा रुबीना हाशमी साहिबा यहाँ लंदन में रहती हैं और खावर हाशमी साहिबा की अहलियाँ हैं। आपकी खाला मोहतरमा ताहिरा वंडरमैन साहिबा भी यूके जमात की एक मुखलिस और मुस्तैद खातून हैं और बड़ी मेहनत से इंग्लिश टाक का काम करती हैं। आपकी शहादत पर जर्मनी के सफीर के अलावा कायद आजम यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ प्रोफेसर और दीगर शख्सियात نیز ملکی اخبارات دی نیوز، راولپنڈی، ہفت روزہ پلس، اسلام آباد اور دی مسلم اسلام آباد نے ملائیت اور مذہبی تعصب کو جتنا بھی وہ برا بلا کہہ سکتے تھے کہا، اور آپ کی وفات پر آپ کے پسماندگان سے تعزیت کی. اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے. یہ مختصر ذکر ہے اس شہادت کا، جس کے بعد اگلے خطبے سے انشاءاللہ باقی شہداء کا ذکر شروع کیا جائے گا. اس لیے آپ یہ پرائیویٹ سیکرٹری صاحب کو سنبھال لیں. یہ ہو چکا ہے. اور یہ ابھی ہونے والا ہے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ نشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.